ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिन की यात्रा पर आज सवेरे रवाना हुए। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की ये पहली ब्रुनेई यात्रा है। प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में सिंगापुर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण के मामले में दोनों देश महत्वपूर्ण साझेदार हैं। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्रुनेई और सिंगापुर की उनकी यात्रा से दोनों देशों के साथ तथा बड़े आसियान क्षेत्र में भारत की साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय जब भारत और ब्रुनेई अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं तो वे सुल्तान हसन अल बुलकिया और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत करना चाहते हैं ताकि दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। श्री मोदी ने कहा कि वे ब्रुनेई से कल सिंगापुर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सिंगापुर के साथ रणनीतिक साझेदारी और आगे बढ़ाने के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा से पहले एक साक्षात्कार में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पिछले 2 दशकों में बहुत अधिक सशक्त रहे हैं। इस बीच सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त डॉ शिल्पक अम्बुले ने कहा कि भारत और सिंगापुर नए उभरते क्षेत्रों को और बढ़ावा देने के लिए संबंधों को सशक्त बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आसियान देशों में सिंगापुर भारत के लिए संपर्क का मुख्य स्तंभ रहा है। भारत ने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में 132 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वां स्थान हासिल किया है। नीति आयोग ने बताया कि भारत उन देशों के समूह में शामिल है जो GII रैंकिंग में पिछले दशक में तेजी से आगे बढ़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले दशक में नवाचार के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ा है। भारत का नवाचार में लगातार 13वें वर्ष बेहतर प्रदर्शन रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि वे देश के विकास का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने ये बात आज पुणे में सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर कही। उन्होंने स्त्री पुरुष समानता पर बल देते हुए समावेशी विकास की दिशा में विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों का लक्ष्य मूल्यों पर आधारित शिक्षा, संस्कृति तथा समाज की जरूरतें समझने में विद्यार्थियों की मदद करना होना चाहिए। वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत अब तक 52 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह अभियान एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में गुजरात में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज सूरत और भरूच जिले के लिए अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उधर आंध्र प्रदेश में NTR और गुंटूर जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में युद्धस्तर पर सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तेलंगाना के कई इलाकों में वर्षा में कमी आई है जबकि कुछ हिस्सों में बारिश जारी है। तेज बारिश के कारण खम्मम, महबूबाबाद और सूर्यापीठ जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया दल राहत गतिविधियों में लगे हुए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गजा मिस्र सीमा पर फिलाडेल्फी गलियारे में इसराइली रक्षा बलों की तैनाती रखना इसराइल की रणनीतिक आवश्यकता और अनिवार्यता है। एक बयान में नेतन्याहू ने कहा कि फिलाडेल्फी गलियारा से हमास को हथियारों की आपूर्ति की जा रही थी। इस बीच हजारों लोग देशभर में रैलियां और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरिस पैरालंपिक खेलों के 6वें दिन आज टीम इंडिया निशानेबाजी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीतने का प्रयास करेगी। निशानेबाजी में अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल महिलाओं की 50 मीटर SH1 श्रेणी के मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। तीरंदाजी में पूजा महिलाओं की रिकर्व प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।